परिशिष्ट 13 वाशिंगटन सम्मेलन 1921 से 1922 वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस पृष्ठ संख्या 187 नवंबर 1921 से फरवरी 1922 तक वाशिंगटन में नौसैनिक हथियारों को कम करने तथा पूर्वी एशियाई और अंतर्राष्ट्रीय सैनिक समस्याओं को सुलझाने के लिए यह सम्मेलन हुआ। इसके द्वारा कई संधियों पर हस्ताक्षर हुए और निष्कर्ष निकाले गए, जिनके परिणाम स्वरूप 1902 का एंग्लो जापानी गठबंधन समाप्त हो गया, नौसैनिक निर्माण को कम कर दिया गया तथा चीन की राजनीतिक एवं क्षेत्रीय अखंडता को स्वीकार कर लिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप इस सम्मेलन को बुलाना जरूरी हो गया। 1921 तक जापान सुदूर पूर्व की राजनीति में अपने प्रभुत्व को स्थापित कर चुका था। सुदूर पूर्व में अमेरिका के अधिकारों को खतरा था। अमेरिका जापान के सैनिक विस्तार को रोकना चाहता था। पूर्वी एशिया को लेकर जापान और अमेरिका के बीच इतना अधिक तनाव बढ़ चुका था कि दोनों के बीच युद्ध होने की संभावना थी। इसी के साथ जापान, इंग्लैंड और अमेरिका के बीच होने वाली नौसैनिक दौड़ ने इस स्थिति को और भी खराब कर दिया था। इसके अतिरिक्त एंग्लो जापानी समझौते की अवधि जुलाई 1921 में समाप्त होने वाली थी। बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में यह आशंका थी कि जापान और अमेरिका के बीच युद्ध की स्थिति में कहीं इंग्लैंड भी ना फंस जाए। इंग्लैंड भी जापान के साथ अपने समझौते को तोड़ना चाहता था। इन परिस्थितियों में अमेरिका ने युद्ध दिवस आर्मिस्टिस डे के दिन 1921 में सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जापान, अमेरिका, चीन, बेल्जियम, नीदरलैंड और पुर्तगाल ने हिस्सा लिया। रूस को, जो समाजवादी देश बन गया था, इसमें नहीं बुलाया गया था। चार शक्तियों का समझौता, द फोर पावर पैक्ट। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस तथा जापान के बीच यह समझौता हुआ था और इसने एंग्लो जापानी संधि 1902 का स्थान लिया। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला, संधि करने वाले देशों के बीच प्रशांत क्षेत्र को लेकर उठने वाले तनाव यदि कूटनीति द्वारा न सुलझ सके तो उसका फैसला सम्मेलन के माध्यम से किया जाएगा। दूसरा, यदि किसी एक शक्ति द्वारा किसी दूसरी शक्ति के अधिकारों को चुनौती दी जाती है तो या तो व्यक्तिगत स्तर पर या चारों देश मिलकर उस स्थिति का हल निकालने की कोशिश करेंगे। तीसरा, इस संधि को 10 वर्षों के लिए लागू किया गया था, परंतु 12 महीनों के नोटिस पर इस संधि से अलग हुआ जा सकता था। पांच शक्तियों की नौसैनिक संधि, फाइव पावर नेवल ट्रेटी, 1920 तक जापान, इंग्लैंड और अमेरिका के बीच नौसैनिक प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक बढ़ गई थी। 12 नवंबर 1921 को अमेरिका के राज्य सचिव ह्यूज ने नौसैनिक निशस्त्रीकरण के लिए एक योजना का प्रस्ताव रखा। इस योजना में कहा गया कि सभी बड़े बेड़ों को बनवाना बंद कर दिया जाए और जिन बेड़ों का प्रयोग जापान, इंग्लैंड और अमेरिका द्वारा किया जा रहा है उन्हें नष्ट कर दिया जाए। इस संधि में अमेरिका, ब्रिटेन और जापान का नौसैनिक अनुपात 5:5:3 रखा गया। इटली और फ्रांस के लिए यह अनुपात 1.75 था। नौ शक्तियों की संधि, नाइन पावर ट्रीटी। वाशिंगटन सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह संधि थी, क्योंकि इसमें चीन और साइबेरिया के भविष्य को लेकर समझौता किया गया। इन देशों ने चीन को लेकर यह स्वीकार किया कि पहला, चीन की प्रशासनिक स्वतंत्रता तथा क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाए। दूसरा, चीन को एक सशक्त और अस्थायी सरकार बनाने का अवसर दिया जाएगा। तीसरा, चीन में सभी राष्ट्रों को वाणिज्यिक कार्यों के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी। चौथा, चीन में कहीं भी प्रभाव क्षेत्र न तो बनाया जाएगा और न ही उसे बनाने की किसी कोशिश को समर्थन दिया जाएगा। जापान ने अपने 21 मांगों से गुट 5 को वापस लेना स्वीकार कर लिया। शांतुंग समझौता, चीन इस संधि के अंतर्गत शांतुंग प्रदेश वापस लेने में सफल हो गया। फरवरी 1922 में हुए इस संधि के तहत जापान ने शांतुंग चीन को वापस देना स्वीकार कर लिया। जापान ने इस प्रदेश में अपने अधिकृत जर्मनी के प्रभाव क्षेत्रों को भी वापस देना स्वीकार किया। जापान ने अपने अधिकार के दौरान जिन क्षेत्रों को विकसित किया था उनके बदले में चीन ने धन देना स्वीकार किया। संधि के अंतर्गत जापान ने अपने अधिकृत क्षेत्रों से 6 महीने के अंदर अंदर अपनी सेना को वापस बुलाना स्वीकार किया। वाशिंगटन सम्मेलन काफ़ी सफल रहा। इसने जापान और अमेरिका के बीच की नौसैनिक प्रतिस्पर्धा को रोका। कुछ समय के लिए एक तरफ चीन और जापान और दूसरी तरफ जापान और अमेरिका के बीच के तनाव स्थगित हो गए। इस सम्मेलन ने इस बात पर भी बल दिया कि चीन को अपना राष्ट्रीय उद्धार स्वयं ही करना होगा। जापान में इस सम्मेलन के प्रति अनेक प्रतिक्रियाएं हुई। उसे ब्रिटेन और अमेरिका के समान नौसैनिक समानता नहीं मिली। कातो कांजी, जो बाद में नौसेना अध्यक्ष बने, ने वाशिंगटन सम्मेलन के बारे में यह कहा कि जिस दिन से नौसैनिक अनुपात को निर्धारित किया गया था तभी से अमेरिका और जापान के बीच युद्ध शुरू हो गया। कुछ लोग यह महसूस कर रहे थे कि जापान को प्रथम विश्व युद्ध से चीन में जो अधिकार प्राप्त हुए थे वे इस सम्मेलन ने समाप्त कर दिया। दूसरी ओर द वाशिंगटन पोस्ट ने इसे जापान में अंतर्राष्ट्रीयवाद की विजय की संज्ञा दी। यह महसूस किया गया कि प्रमुख नौसैनिक शक्तियों के बीच जो शक और अविश्वास का वातावरण था वह इस सम्मेलन ने समाप्त कर दिया। यह भी धारणा थी कि इस सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अच्छी धारणा को जन्म दिया। इस तथ्य में संदेह नहीं कि इस सम्मेलन ने प्रशांत और सुदूर पूर्व में शांति के वातावरण को पैदा किया। जापान की सफलता इस बात में थी कि इस सम्मेलन ने हवाई और ब्रिटेन के अधीन सिंगापुर में अमेरिका की सैनिक गतिविधियों को रोक दिया। इस क्षेत्र पर अब जापान का नियंत्रण बढ़ गया था और चीन के भविष्य पर जापान का पूर्ण नियंत्रण हो गया था।